हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक क्रमांक 26। काम क्रोध विमुक्तानां यति नाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी हैं और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रतितमुद्ग्रथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रुद्धा स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो ये बात जो चार कुमार हैं वो पृथु महाराज को दिए उपदेश दे रहे थे और उस संबंध में आती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। बहुत सारे लोग मोक्ष के लिए जन्म मृत्यु के चक्र के लिए प्रयत्नशील होते हैं और उसके लिए वो कर्म योग ज्ञान योग इत्यादि का सहारा लेते हैं, लेकिन भगवान यहां बता रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, प्रभुपाद यहां तात्पर्य में समझा रहे हैं कि ऐसे सभी लोगों को भगवान ने बोला सभी लोगों की मुक्ति निश्चित है भविष्य में, लेकिन भक्ति योग की तुलना में ये सारे जो अन्य पद्धतियां हैं इनकी शक्ति काफी कम है, बहुत कम है। अभी तो भक्ति के बिना ये सारी जो योग पद्धतियां हैं वो अपना फल दे भी नहीं पाती हैं, शास्त्र इसको बताते हैं। तो ये बोल रहे हैं कर्माशयं ग्रचितम उद्ग्रथयन्ति संतः। हृदय में ये जो मिथ्या अहंकार है इस कारण से इंद्रियों का वेग हम बड़े से बड़े साधु भी रोक नहीं पाते, जैसा कि हम विश्वामित्र के केस में देखते हैं। कई हजारों साल तक उन्हें तपस्या किया फिर भी मेनका का उनको संग उन्होंने किया और उसके द्वारा जो है एक कन्या का उत्पन्न हुई थी। तो क्यों? क्योंकि ये जो विषयों के प्रति आसक्ति है ये बहुत ज्यादा प्रबल है, लेकिन जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो भगवान कृष्ण की भक्ति से ऐसा सुख मिलता है जिसके द्वारा वो इन कह सकते हैं इंद्रियों के वेगों को वो सहन कर लेता है। ये कहा जाए कि इंद्रियों का वेग अब जो है वो भगवान की तरफ मुड़ने लगता है, भगवान की सेवा में वो सुख मिलने लगता है। और इसी बात को बोल रहे हैं कि सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा, इस जगत को भोगने की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट कर देते हैं, मतलब वो इच्छा का उदय ही नहीं होता भक्त के हृदय में, क्योंकि भगवान की सेवा में भक्त पूरी तरह से तृप्त होते हैं। उदाहरण के लिए कोई अगर व्यक्ति फीस्ट से उठा हो, बहुत अच्छा भोज चल रहा हो, पेट भर के उसने प्रसाद पा लिया, तो उसके बाद कोई कहे कि भाई आप थोड़ा सूखे चावल खाएंगे तो वो बिल्कुल भी उसमें उसकी रुचि नहीं होगी, लेकिन अगर व्यक्ति भूखा होता है तो कब तक वो खाने को मना करेगा। हम सबका अनुभव है जब बहुत कस के भूख लगती है तो कहा भी जाता है कि सूखे चने भी जलेबी जैसे लगते हैं। तो अगर ये इंद्रिय भोग की वासना हृदय में है तो इंद्रियों के वेगों को रोकना बहुत मुश्किल है, जैसे व्यक्ति कोई सांप है, 5-6 सांप हो और उनको पिटारे में कस के बंद किया रहे या उनकी गर्दन दबा के रखे ताकि उसको काट ना सके, लेकिन जरा सा भी वो ध्यान से चूकेगा तो कोई भी सर्प उसको काट लेगा। तो ये स्थिति है, ये तरीका है उन योगियों का जो इंद्रियों का दमन जबरदस्ती करना चाहते हैं। लेकिन भक्त क्या स्थिति होती है, वही सर्प अगर मंत्र के द्वारा वशीभूत हो और उसके दांत निकाल लिए जाएं तो सर्प के काटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए भक्तों के लिए अब उनकी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने के लिए इतने सारे ही मौके हैं कि इंद्रियों को अन्य जगह जाने की पहली बात तो कह सकते हैं छूट नहीं होती है, और दूसरा भगवान की सेवा करने में इंद्रियों को इतना सुख मिलता है कि वो जीवात्मा को इतना सुख मिलता है कि वो जगत की सेवा करने में अपने आप ही रुचि को खो देते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने बता रहे हैं कि सारे साधु पुरुषों में भगवान के भक्त कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त, इसीलिए हमने चर्चा किया था कि भक्ति करना आसान है अगर हृदय में काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, लेकिन देखिए हम सब लोग इन सब वस्तुओं से प्रभावित हैं, इसके लिए बहुत अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि हम लोग भक्ति के साधन ठीक से कर सकें और फिर हृदय से इन सबको जो हृदय ग्रंथियां हैं या हृदय में जो दोष हैं उनको हम निर्मूलन कर सकें भक्ति के द्वारा, और फिर भक्ति बहुत सहज हो जाएगी। जब हमारा मन अब नैसर्गिक रूप से भगवान की तरफ जाने लग जाएगा तब खतरा नहीं है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तब तक नियमित रूप से हमें श्रवण करना बहुत आवश्यक है, और उसके बाद श्रवण करना तो अपने आप सहज हो जाएगा, लेकिन इस समय तो हमारे लिए श्रवण करना एकदम जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। अन्यथा हमारा नाम जप और बाकी सारा कुछ वो है वो सूखा सूखा हो जाएगा और उसमें हमको रुचि नहीं आएगी। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भक्ति में निरंतरता होनी चाहिए। अब निरंतरता का अर्थ एक साधक के लिए, हम जैसे साधकों के लिए 24 घंटे तो नहीं हो सकता, मतलब 24 घंटे हम नाम जप नहीं कर सकते, ये तो हमारे लिए इतना हमको अभी रुचि नहीं है, लेकिन हमारे निरंतर का अर्थ है नियमित करना, रोज करना, और अगर हो सके तो उसी समय पे करना, रोज एक ही टाइम पे उठना, एक ही टाइम पे जप करना, इससे वृत्ति के हृदय में भक्ति में स्थिरता आती है और ये बहुत हमारे लाभकारी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी और हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ये इंटरेस्टिंग है, आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि व्यक्ति इस भावना में रहे हमेशा कि मैं कृष्ण का नित्य अंश हूं, तो उसका मन और किसी धारणा के प्रति नहीं जाता और किसी पहचान की तरफ नहीं जाता, और इस कारण से वो लगातार कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। उन सेवाओं का प्रारूप जो है, बाह्य जो आवरण है, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन भक्त का मन इस आधार में, इसका चित्त इस प्रकार से लगा हुआ है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना अलग अलग रूपों में। तो प्रभुपाद इसको प्रैक्टिकल समाधि करते थे, मतलब कभी भक्त जप करते हैं, कभी सब्जी लेने के लिए जाते हैं, कभी भगवान के लिए सब्जी काटेंगे, कभी भगवान का श्रृंगार करते हैं, कभी भगवान के लिए कुछ प्रचार करते हैं, कुछ इस प्रकार से अलग अलग क्रियाओं के द्वारा अपने मन को लगातार भगवान में लगाए रखना, ये प्रभुपाद जी समझाते हैं प्रैक्टिकल समाधि। और इसको इसका कारण क्या है, आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होना, यानी कि मैं कृष्ण का दास हूं ये व्यक्ति स्वीकार करे पूरे ज्ञान में और फिर उसके अनुरूप कार्य करता रहे। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है, दर्शन ध्यान संस्पर्शय मत्स्य कूर्म विहंगमाः स्वान्य पत्न्यानि पुष्णन्ति तथा हमपि पद्मजा। मछली कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि चिंतन तथा स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं, हे पद्मज मैं भी उसी तरह करता हूं। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान से विमुख होना ही हमारे दुखों का कारण है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतेव माया दे तार संसार दुख। तो हमें उतने अधिक मात्रा में दुख प्राप्त होंगे जितनी अधिक मात्रा में हम भगवान का स्मरण विस्मरण करते हैं। ये हमारा मूलभूत कारण है। उदाहरण के लिए जैसे शरीर में कोई रोग हो सकता है तो उसके बाह्य सिम्टम्स बाह्य चिन्ह हमको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे इसका मूलभूत कारण ये है कि आपके शरीर में कफ बढ़ गया है या पित्त बढ़ गया है, जो भी कारण हो सकता है, और उसका निर्मूलन करेंगे तो बाह्य जो सिम्टम्स हैं चिन्ह हैं वो अपने आप चले जाएंगे। उसी प्रकार से हम सभी जीवात्माओं का दुखों का एकमात्र कारण है हम कृष्ण से विमुख होना चाहते हैं, और उसके लिए ऐसे कार्य करते हैं जो हमें कृष्ण से विमुख करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब भक्त लगातार भगवान का चिंतन करते रहते हैं तो भले ही वो भगवान के धाम में ना हो, लेकिन भगवान अपने आप उस भक्त के हृदय से और भक्त के ऊपर माया का प्रभाव कम करते जाते हैं। माया के द्वारा जो दुख होते हैं भक्त के जीवन में नहीं आते हैं, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि आदि दैविक वो कम होते चले जाते हैं। और जो दुख आते भी हैं तो सच्चे भक्त उसको भगवान की कृपा मांगते हैं, कृपा मानते हैं, तो फिर वो जब कृपा मानेंगे तो व्यक्ति फिर कैसे दुखी होगा। ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि भक्तों के लिए है, फिर भी बुद्धि के स्तर पर भी भक्त समझते हैं कि जितना मुझे कष्ट आना चाहिए उससे बहुत कम आया, और ये होता भी है। ऐसा नहीं है खाली भक्त मानते हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में जो बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता है तो भगवान उसको बहुत कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से भक्त हमेशा भगवान के स्मरण करने से उनका भौतिक जगत के दुखों से निवृत्ति प्राप्त कर सकता है, और ये एकमात्र तरीका है। और भगवान बता रहे हैं अगर इस प्रकार से व्यक्ति निरंतर लगा रहता है तो उसकी मुक्ति निश्चित है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि भगवान रीअश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार से भक्ति करते रहोगे, अपने इंद्रियों को संयमित करते रहोगे, तो निश्चित मेरे धाम की प्राप्ति करोगे।